Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक सुर्खियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अनुभव.
Thank you, Amit. Domestic benchmark indices decline. Sensex drops more than 170 points. Nifty settles at 25,476. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Namibian president to deepen economic partnership. And oil prices rise amid forecast of lower US oil production.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स में 170 अंक से अधिक की गिरावट. निफ्टी 25,476 के स्तर पर दर्ज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की. और अमेरिका में कच्चे तेल उत्पादन में कमी की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी. घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर रहा. अमरीकी शुल्कों पर अनिश्चितता के चलते बाजार में सतर्कतापूर्ण माहौल रहा. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% के नुकसान से 176 अंक गिरकर 83,536 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 46 अंक गिरकर 25,476 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई.
Domestic equity indices closed lower today as market sentiment remained cautious amid persistent uncertainty over US tariff policies. Investors also awaited clarity on a potential US-India trade agreement. The Sensex settled at 83,536, falling 176 points or 0.21%, while the Nifty ended the day at 25,476, down 46 points or 0.18%. Broader indices outperformed the main indices, with BSE Mid Cap Index ending flat, while Small Cap Index added 0.5%.
सेंसेक्स पैक में गिरावट वाले शेयरों में टाटा स्टील, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा प्रमुख रहे, जबकि बढ़त वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनियों के शेयर रहे.
ऑन द सेक्टोरल फ्रंट एट द एनएससी, मेटल, रियलिटी एंड ऑयल एंड गैस इंडिसीज फेल 1.4% ईच. मीडिया, आईटी, पीएसयू, बैंक स्लिड 0.5% ईच, व्हाइल एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रोज बिटवीन 0.3% and 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,142 stocks traded, shares of 2,076 companies advanced, while shares of 1,926 companies declined, and shares of 140 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 61 companies hit their 52-week high, while 30 hit their 52-week low.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा और 85.67 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. प्रोफेसर भट्टाचार्य जी, क्या तरीके से आंकते हैं शेयर बाजार की आज की दशा और दिशा को? पिछले दिनों में हालांकि जहां बाजार में एक मजबूती का दौर निकला था, आज थोड़ी सी हल्की सी गिरावट है. क्या सिर्फ ये कहेंगे कि इस स्तर पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली करी है, या इसके पीछे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारण, खासतौर पर जो अमरीकी व्यापारिक वार्ता चल रही है उसके रिजल्ट आने के पहले निवेशक जो थे वो अपना सतर्कतापूर्ण निगाह बनाए हुए थे?
देखिए, आपने जो कहा सतर्कतापूर्ण निगाह रख रहे हैं वो बात सही है. और जो इंडिया यूएस की जो एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है, उसकी क्या दिशा होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता है क्या होगी अंतिम में. उसके लिए भी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, अगर डिसअपॉइंटमेंट होगी तो वो मार्केट के रूप में देखेंगे, पर इस वक्त थोड़ा बहुत नर्वसनेस इंडिया यूएस ट्रेड डील में है। पर उसके उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि मार्केट में अगर आप ओवरऑल ट्रेंड्स देखेंगे, मार्केट में अभी जो एक इंटरनल रेजिलियंस जो है वो अभी भी बरकरार है। और मैं इसलिए कहूँगा ये चार चीज मैं कहूँगा। ये पहली बात तो ये है कि जो अगर आप FMCG या ऑटो ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के हैं उनकी जो परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें डिमांड एक जो अर्बन डिमांड की जो रिवाइवल की जो एक बात एक सिग्नल आ रही है उससे मार्केट में अंदर ही एक मजबूती का एक आभास मिल रहा है। दूसरी बात जो आपका जो मॉनसून का जो आभास जो आ रहा है और मॉनसून का पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है उससे रूरल डिमांड मैं समझता हूँ कि रूरल डिमांड में एक
बढ़ने
की उम्मीद है। तो ये दो तीन चीज से मैं समझता हूँ कि जो मार्केट की जो एक रेजिलियंस जो है अभी भी बनी हुई है, हालांकि आज की तारीख में 0.2% की गिरावट को हमें उस तरह से नहीं देखना चाहिए। ये ज़्यादातर ये सेंटिमेंट इंडिया यूएस ट्रेड डील उसके वो ज़्यादा दर्शाता है, ना कि मार्केट में कोई बेसिक वीकनेस।
Mr. Bhattacharya, you just mentioned, of course, that, you know, we're seeing that revival in the FMCG, auto and consumer durables sectors. But today we see, especially metal sector, you know, has gone down by about 1.4%. Connected directly to the announcement made by President Donald Trump, day before yesterday? We are talking about the fact that, you know, he's announced that 50%... tariff on copper, which is going to be imported into US.
Yes, certainly. So I think the metal sector is directly impacted by that statement. But even otherwise, the metal sector is also influenced by the kind of demand in various industries. Mm-hmm. Which are highly demand sensitive, in a sense that if there is take steel. There is a problem with the steel industry. There is domestic industries unhappy with the kind of the safeguard duty. Mm-hmm. There are doubts about whether the safeguard duty is good enough or not. And if in the mini deal between India and US, there is a reduction in that duty. So the metal industry is worried. So I think it's a nervousness over what the implications of the mini India-US trade deal will be is largely impacting those sectors and their performance in the stock market.
Mr. Bhattacharya, आपने अभी दो तीन चीजें कही कि बाजार में चूंकि मानसून से अच्छी खबर है और साथ ही साथ क्या ये भी मानने के पर्याप्त कारण है कि हमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर पे भी राहत है? कंपनी जगत के जो पहली तिमाही के नतीजे हैं वो अब कुछ दिनों में और आने शुरू हो जाएंगे, क्या हमें वहां से भी लगता है कि कंपनी जगत से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है जिसको बाजार भांप कर एक मजबूत स्थिति बनाए हुए है? और क्योंकि बैंकों ने भी पिछले दिनों में ब्याज दरों में कटौती करी थी, अब वो उपभोक्ताओं तक पहुंचना भी हो गया है।
देखिए, आपने दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका जो इंडिकेशन हमें दो तीन चार दिन में आ जाएगा, उसमें ये लग रहा है कि अर्ली इंडिकेशन जो आ रही हैं, जो अगर आप रिटेल प्राइसेस मार्केट में मेन चीज में देखेंगे कि इस बार भी जो जून का जो इन्फ्लेशन लेवल आएगा उस बार भी 4% से नीचे आएगा। तो ये चीज जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है मार्केट के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि
महंगाई दर के साथ साथ हमारी जो कंपनी जगत के नतीजे
कल से शुरू हो रहे हैं,
उसमें जो हमें जो अर्ली इंडिकेशन जो आ रही है उसमें इस क्वार्टर की जो मार्जिन जो है, इनकम जो है, वो करीबन 4.4% ग्रोथ होगा, हालांकि पिछले क्वार्टर में वो 3.3% था। तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इंक्रीज दिख रहा है, हालांकि ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज नहीं दिख रहा है। तो स्टॉक मार्केट ज्यादातर कंपनियों को देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देखता है कि भाई पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अच्छा हुआ है कि नहीं। तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद जो 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 कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स जो है वो पिछले क्वार्टर से ज्यादा अच्छी होगी। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट उसके कारण भी हमें देखने को मिल रहा है.
मूविंग फॉरवर्ड मिस्टर Bhattacharya, वुड यू से दैट यू नो बिकॉज लास्ट थ्री सेशंस वी सॉ दैट द मार्केट्स क्लोज्ड इन ग्रीन बट टुडे ऑफ कोर्स देयर वाज अ 0.21% डिक्लाइन बट मूविंग फॉरवर्ड what is your estimate of how would you you know say how are the markets likely to behave? Are we going to continue to see the volatility, and if that is going to happen, what are the sectors that one can focus on?
Well, I think volatility will continue as long as if I may say, as long as you have US president in Mr. Donald Trump, whose actions, inactions are completely unpredictable.
Yes.
So you will see this volatility in the market, because after all, US is the world's largest economy. There are a lot of money which comes in and gets invested in the Indian market. They pull out money, the stock market is impacted.
Yes.
They bring in money, the stock market is impacted. So I think that is a given, volatility. But what you have to see is this, that what are the inherent strengths of the Indian economy, which will probably act as a counter. Now, you will be would have already noted that there has been no decrease in the equity investment.
Yes.
By ordinary retail investors in the month of June. As a matter of fact, there's a revival there.
Yes.
There's a revival in SIPs in June. Now, if you remember that June was even more volatile than what it has been volatile in the first 9 days of July. So clearly, Indian retail investors are banking on the inherent strengths of the Indian market and the Indian demand, which they hope will be able to give them better returns. I think it's a to give you a short answer to your question, I think the Indian retail investors are quite positive and hopeful that going forward they are going to get a kind of return from their investments which will whet their hunger.
And they are taking volatility in their stride,
In their stride, because they know that this volatility is induced by external factors which are quite exogenous.
Bhattacharya ji, ये जो दो चीजें आपने बताई, भारतीय निवेशक अब वो शेयर बाजार से एक तारमेल बैठाना सीख गया है, और वो वैश्विक परिदृश्य में कुछ भी हो उसको भारतीय की जो अंदरूनी ताकत है उसका एहसास है. क्या भारतीय निवेशक अब इतना परिपक्व हो चुका है और वो शेयर बाजार की जो बारीकियां हैं वो उसको समझते हुए निरंतर निवेशित बना रहना चाहता है, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही हो, वो एक हमारे आर्थिक तंत्र को मजबूती दे रहा है कि वहां से कहीं ना कहीं पूरे अर्थतंत्र को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेश लगातार हो रहा है और बाजार की दिशा में थोड़ा बहुत अगर उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता.
देखिए, जो आपने कहा कि जो अर्थतंत्र में जो मजबूती वो स्टॉक मार्केट निवेश से आती है, वो तो बात एकदम सही है, पर आपको ये भी देखना है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट आप और हम जैसे इंसान डायरेक्टली मार्केट में नहीं कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं. और म्यूचुअल फंड जब करता है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो आप और मेरे पैसे म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं. आज की तारीख में म्यूचुअल फंड की शेयर स्टॉक मार्केट में इक्विटी में बढ़ती जा रही है. मैं एग्जैक्टली लेटेस्ट डेटा मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये बढ़ती जा रही है. और उसके साथ साथ हमने ये क्या देखा है कि जो ये रिटेल इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में जा रही है, उससे जो एक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसकी हम बात करते हैं, वो दिखाता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर की एंथुजियाज्म की स्टॉक मार्केट से वो किसका लाभ उठाए, वो पिछले 3 महीने में थोड़ी नरमी आई थी थोड़ी, पर अगर आप 1 महीने में लास्ट में देखेंगे, जो एक IPO की एक फ्रेंजी या बूम कहेंगे, वो वापस आ गई है. अभी 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 जो एक ICICI प्रोडेंशियल जैसा AMC कंपनी, वो 10,000 करोड़ की एक IPO ला रही है. इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो IPO ला रहे हैं. कंपनियों के अंदर जो एक एनिमल स्पिरिट है, वो भी देखने को लगती है कि एक लेंसकार्ट जैसी कंपनी एक AI कंपनी को खरीद रही है
जी.
या विदेश की एक कैपजेमिनी कंपनी वो यहाँ पे WWS जैसे AI बेस्ड कंपनी को खरीद रही है. तो AI हमारी जो अनसर्टेनिटी तो लाई है पर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाई है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो ये एक एनिमल स्पिरिट दिखने को मिल रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहा है, चार पांच डिफरेंट जैसे डेट है
जी,
इक्विटी है, हाइब्रिड फंड्स हैं, आर्बिट्राज फंड्स हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड की जो एक एडवांस जो एक स्टेटस है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट को बहुत सपोर्ट दे रहा है इस वक्त
जी। चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6%, जापान का निकेई 0.3% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक 0.2% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.2% से 1.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
मिस्टर भट्टाचार्य, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। यू नो एशियन मार्केट्स वी टॉक अबाउट, वी सी दैट साउथ कोरियाज कोस्पी रोज टुडे जस्ट 0.6% ऑफ कोर्स, निकेई रोज अबाउट 0.3% एंड बोथ दीज इंडिसेस rose even yesterday, just a day after, or rather, you know, just a few hours after President Trump announced the tariffs, additional tariffs on these, especially Asian countries. So do you think that, you know, economies, the world economies are kind of shrugging off these tariff announcements that are coming out of US? Because it doesn't seem to have had
I think you are right. You have very astutely made this observation. I think it is coming more out of certainty.
Okay.
In a sense that these markets now know that this is what the US would do to Japan, this is what the US would do to Korea, this is what the US will do to Vietnam.
Yes.
So, and these are all important players in that Asian market. So I think it is this minor improvement in the stock market sentiment is a reflection of kind of a certainty now emerging that, okay, the US will do this, impose this tax at this level. Till yesterday, before the Trump's statement on this, there was no clarity what will be the level of tariffs.
Okay.
So I have a feeling that even in the case of the India-US mini trade deal that everybody is expecting, you will see a positive bounce back for the market once this certainty emerges that this is the animal, this is the beast that we need to deal with. And right now, we don't know what is the shape of that beast.
Yes.
So once that that clarity emerges, I have a feeling the stock market will always operate in a more positive sentiment if that certainty emerges.
And the certainty you're talking about, it can be, you know, even if it means increased tariffs or higher tariffs, but that still is a certainty.
Certainty, and you know how to deal with that.
Yes, yes. Moving on, in United States, Wall Street's main indices ended yesterday's choppy session, flat to slightly lower, as investors waited for clarity on U.S. trade policy after President Donald Trump's latest tariff threats dampened hopes around talks with some trade partners. The S&P 500 shed marginally to end the trade at 6,225, while the Dow Jones Industrial Average slipped 165 points to conclude the session at 44,240. However, the Nasdaq gained over 5 points to close at 20,418. I have to ask you, you know, earlier, the Liberation Day tariffs that the president announced, he postponed it and they were supposed to have come into effect today. Now, Monday, again, late, early Tuesday, he announces another set of tariffs and have postponed it to August 18th. What can we expect from Trump, you know, President Trump, and why is this happening again and again?
Oh, well, I have a feeling even Mr. Trump may not be able to answer this question because okay. He may not know what really is happening. But what is happening and what is very clear is the way the U.S. stock market is reacting.
Mm-hmm.
The U.S. stock market, unlike the Asian stock market, is actually behaving nervously because if there is one economy which will decidedly be adversely affected by the U.S. tariffs, it is the U.S. economy.
Yeah.
Their inflation will go up.
Right.
Their Fed will not be able to reduce rates as is being demanded of it. So therefore, U.S. will have to deal with not only high inflation, deal with probably higher tariff, the cost will go up, and you will see kind of a governance struggle between the executive and the central bank chief.
Right.
So I think the U.S. market is very correctly capturing that nervousness in the U.S. economy, where already you are seeing that that inflation rate is inching up, employment rate is still okay, but you do not know how long it will last.
So therefore, these
are difficult days for the U.S. economy.
Moving on, Prime Minister Narendra Modi today held delegation-level talks with the Namibian President Netumbo Nandi-Ndaitwa at the State House in capital city of Windhoek. The deliberations were aimed at deepening economic partnership between the two countries by exploring new areas of cooperation in critical sectors. Several MOUs are expected to be signed, focusing on expanding cooperation in key areas such as energy security, healthcare and pharmaceuticals between the two countries. A very quick question here, Mr. Bhattacharya. You know, we've been talking about all the focus has been on the India-US trade deal, but the Prime Minister right now is in Africa. How important is Africa overall for India, you know, from the economic point of view?
Very important because of the large reserves of minerals, key minerals that lie in Africa. And it is not the only country in Africa that the Prime Minister has visited.
He
started his 7-day or 8-day visit with an African country, with Ghana. He signed agreement there on critical minerals. Here also he is hoping to sign some critical minerals agreement. So if you look at the entire trip of the Prime Minister, at one level it is for multilateral cooperation through the BRICS. At another level, it is about bilateral cooperation on critical minerals area, which are really critical for sustaining the kind of economic growth that you need with the advent of electrical vehicles and lithium batteries. You need those minerals. Everything will be, will be critical, the minerals wise. So I think the Prime Minister's visit significance lies in that area.
इसके पहले हम अभी सबने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को अब से कुछ देर पहले नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो सभी देशवासियों के लिए गौरवान्वित क्षण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिवसीय ब्राजील यात्रा से दोनों देशों के मध्य आपसी सहयोग संबंध भी मजबूत हुए हैं. प्रधानमंत्री की ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बैठक में अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यवहार को $20 अरब तक पहुंचाने पर सहमति हुई. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मध्य मर्कोसुर व्यापारिक समझौते के तहत मिलकर काम करने की भी घोषणा की, जिससे भारतीय निर्यातकों को ब्राजील के साथ साथ मर्कोसुर क्षेत्रीय विशाल बाजार का लाभ मिल सकेगा. मर्कोसुर क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक में ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय एकीकृत पेमेंट यूपीआई का ब्राजील में विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मध्य कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं और स्पेस तकनीक पर आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा. दोनों पक्षों ने विभिन्न समझौता पक्ष पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर मंत्री स्तरीय निगरानी तंत्र बनाना शामिल है. भट्टाचार्य, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि भारत अब अपनी जो वैश्विक जरूरतें हैं या आंतरिक जरूरतें हैं, चाहे वो खनिज या मिनरल से संबंधित हो या अन्य चीजों से संबंधित हो, क्योंकि अगर हम अपना यहाँ पे उत्पादन क्षमताएं बढ़ाएंगे लेकिन हमारे पास अगर उसके लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हमें दिक्कत आएंगी. इस तरह की यात्राओं से जो आपसी संबंध मजबूत हुए हैं और हमारी व्यापारिक जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण कदम है?
देखिए, ये एक तो ना ही इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जरूरत है
जी,
पर अगर आप देखें ग्लोबल ट्रेड, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स जो इम्पोर्टेंस जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में एक्सपोर्ट्स ग्लोबल वैल्यू चेन के जरिए होता है कि एक चीज़ सिर्फ हमारे देश में नहीं तैयार नहीं होती, कुछ चीज़ बाहर होती है, वो चीज़ इंडिया में आती है, फिर इंडिया में थोड़ा बहुत बन जिनके वो फिर बाहर जाती है. तो ये दोनों चीज़ ग्लोबल वैल्यू चेन्स और एक्सपोर्ट्स, दोनों की ज़रूरतें ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. मर्कोसुर की बात कर रहे हैं, मर्कोसुर में देखिए जो कोऑपरेशन जो है वो किस तरह से इंडियन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल मर्कोसुर कंट्री में हो, उससे भी हमें काफी एक फायदा होगा.
Moving on, Bangladesh now faces uncertainty as US President Donald Trump announced on Monday a new rate for Bangladeshi goods, 35%. That was just a 2% reduction on his original announcement of 37%, which is to become effective from August 1st. And more details on this story from our Dhaka correspondent.
The US is Bangladesh, one of the largest export markets, with approximately 20% of the country's garment export being shipped there. Without the benefit of a free trade agreement, Bangladesh already faces tough competition in the US market. The new tariff of 35% may make Bangladeshi products less competitive, possibly reducing export volumes. This change could affect many factories, particularly those that focus on US customers. Experts believe that there is no denying that in an increasingly uncertain and unstable global trade environment, countries like Bangladesh are at greater risk. This is because Bangladesh has a limited export product diversity. Naval Singh Parmar, Akashwani News, Dhaka.
Mr. Bhattacharya, now that Bangladesh is, of course, we talked about the fact that Bangladesh is likely to, US is likely to impose 35% or rather 30% tax on it. If it happens from anything from, if this happens, how is it going to affect India? Because right now, Bangladesh is one of the biggest, so far as the textile sector is concerned, how is that going to affect India?
Well, it could well be an opportunity for India. Depending on the mini trade deal with the US that takes place. Remember that India has not figured among those countries
yes.
which have been served with those letters, like Bangladesh or Vietnam. So therefore, there's reasonable confidence that India and US will have a mini trade deal. Now, in that trade deal, if you see that India's exports to them, particularly in the area of apparels and garments,
yes.
It is at a kind of a, not a free trade tariff, it will not cannot be less than 10%. But even if it is assumed that it is 10%, then the competitive advantage
yes.
that the Indian garment exporters have, suddenly Bangladesh garments will not be as competitive in the US market as Indian garment producers can hope to be. It may also be strategically, Bangladesh may turn back towards India and seek greater economic cooperation.
Right.
And right now there is a bit of a thaw between yeah. the two countries. So maybe the Bangladesh will turn towards India and try to see in what way it can relocate its garment factories in India and take advantage of the Indian garment sector.
Moving on to commodities, oil prices rose today, maintaining their highest levels since June 23rd, lifted by attacks on shipping in the Red Sea and a forecast of lower U.S. production, while uncertainty over U.S. tariffs loomed in the background. Brent crude was trading 0.09% up at $70.12 per barrel, and WTI crude was trading 0.12% up at $68.41 per barrel when reports last came in. A very quick comment, Mr. Bhattacharya, on crude oil prices. Today, of course, the prices are high. Yesterday, they were low. And that is today, of course, it's because of a specific reason of a forecast of a low U.S. production. Number one, why is that likely to be? And when we compare it with the fact that OPEC has announced increased production in August.
Well, I think what is happening is that there is an oversupply of oil in the world markets, not just because use of oil for many sectors have come down drastically. So there is the glut of sort, not glut, really oversupply, I would say. That is dampening the price sentiment in the market. And I don't think that this sentiment will change. There may be daily fluctuations, but on the whole, the crude oil prices are not going to go up.
In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.57% down at 96,240 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was trading over 0.31% down at 1,07,790 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein agast ke vaida karobar mein sona 0.6% ke nuksan se 95,913 rupees prati 10 gram ke stay pe raha, jabki september ke vaida karobar mein chandi 0.3% ke nuksan se 1,07,684 rupees prati kilogram ke stay par दर्ज हुई. भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद.
नमस्कार.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Domestic benchmark indices decline. Sensex drops more than 170 points. Nifty settles at 25,476. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Namibian president to deepen economic partnership, and oil prices rise amid forecast of lower US production. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
वापस